कल गौर लीला में, गौर लीला कथा में ये प्रसंग चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। वो अपनी यौवन लीला आरंभ कर रहे हैं। जैसे कि कल चर्चा हुई थी, भगवान की आदि लीला उनके पहले 24 साल उन्होंने की। 24 साल में जब उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद मध्य लीला आरंभ हुई, 6 साल तक रही, फिर आखिर के 18 साल भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला कहलाता है। और आदि लीला अर्थात 24 साल के 4 भाग हैं, बाल्य लीला 5 साल की उम्र तक, पौगंड लीला 6 साल से 10 साल तक, किशोर लीला अर्थात नव यौवन लीला 11 से 15 साल तक, और यौवन लीला 16 साल से आगे, खास करके संन्यास लेने तक। तो कल यौवन लीला की शुरुआत हुई। हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो उस समय निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, बड़े विद्वान थे, सारे पंडितों को उन्होंने तर्क वितर्क में, वाद में हरा दिया था। अब ये इच्छा कर रहे थे कि हमें गया जाना चाहिए हमारे पितरों के और पिता के खास करके श्राप के लिए। तो कल चर्चा ये हो रही थी कि जब निमाय पंडित निकले, उनके साथ में कई उनके शिष्य और ब्राह्मण भी थे, और बीच रास्ते में जब वो मंदार पर्वत के पास पहुंचे तो वहां मधुसूदन भगवान का दर्शन किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप है। ये कथा चैतन्य भागवत में आती है, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य मंगल। इस चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर और थोड़ी बातें बताते हैं जो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने ही बताए हैं, और खास करके भगवान के इस बुखार होने की, ज्वर होने की लीला में। वो कहते हैं कि जब वो मंदार पर्वत के पास में आए तो चरा नदी में स्नान किया उन्होंने, और वहां से जो ब्राह्मण थे उनके जो प्रथाएं थी या विधि विधान थे वो थोड़े अलग थे। उनके दृष्टि से जो वो कार्य कर रहे थे वो सही था, ठीक था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो एक ब्राह्मण आए थे उन्होंने उन दूसरे ब्राह्मणों की निंदा की, तिरस्कार किया, कहा कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें दोष देखा। तो निमाय पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। अचानक उनके शरीर में बुखार आ गया। ये भी भगवान की एक लीला है। जैसे भगवान को कैसे बुखार आ सकता है, अपनी लीला से ही भगवान ऐसे करते हैं। और जब बुखार आया तो वो कहने लगे अपने शिष्यों से और अन्य ब्राह्मणों से जो कि उनके साथ आए थे नवद्वीप से, वो कहने लगे कि शायद मैं जो पिंडदान करने जा रहा हूँ गया में, इसमें कोई दोष आया होगा, इसलिए मुझे बुखार आ गया है। कोई भी शुभ काम करने हम जाते हैं तो इसमें अड़चनों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और जब हम कोई अपराध करते हैं तो ये हमारे शुभ काम में अड़चन बन के खड़े हो जाते हैं, तो शायद हमने कोई अपराध किया हुआ होगा। तो इसके लिए उपाय एक ही है कि एक ब्राह्मण के चरणों को धोया हुआ जो जल है उसका पान मैं करना चाहता हूँ, और कोई उपाय नहीं है। बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग हुआ लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ। तो उस समय उस प्रांत के जो ब्राह्मण थे, निमाय पंडित की दशा देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे चरणों से आप पानी ले लीजिए, और निमाय पंडित ने वो जल पी लिया। और तुरंत उनका ज्वर, उनका बुखार खत्म हो गया। और उस समय वो जो ब्राह्मण थे वहां के, वो समझ गए कि वास्तव में ये मेरी गलती थी, और उन्होंने आकर महाप्रभु से कहा कि हाँ, मैं समझ गया कि आप वैसे ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने आपके प्रिय ब्राह्मणों में दोष देखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, खास करके जो ब्राह्मण विष्णु के भक्त हैं, ये जो असली ब्राह्मण हैं, इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे ये तो मधुसूदन भगवान के भक्त हैं, तो इनकी निंदा करना हमारे भक्ति में एक अड़चन बन जाती है। तो वो दूसरे नवद्वीप के ब्राह्मण जो उनके शिष्य थे, वो कहने लगे, हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं कि आपने आपके वक्षस्थल पे भृगु मुनि के जो पद चिन्ह हैं वो स्वीकार किए हैं। ये कथा शायद आप जानते होंगे कि एक बार देवी देवताओं ने स्वर्ग लोक में ये चर्चा चली कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है। थोड़े ऋषि मुनि और देव कहने लगे महेश हैं, थोड़े कहने लगे ब्रह्मा जी हैं, थोड़े कहने लगे विष्णु हैं। तो कैसे इस प्रश्न का सही उत्तर मिला पाया जाए, तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना और कहा कि हे भृगु मुनि, आप जाके परीक्षा कीजिए तीनों की, और परीक्षा करने के बाद यहाँ आकर फिर आप सही बताइए इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है। सबसे पहले भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वैसे भृगु मुनि के पिता हैं, और जैसे ही वहां पर गए तो उन्होंने अपने केवल आंखों से या अपने कार्यों से उन्होंने ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए था, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। तो जब भृगु मुनि ने यह देखा कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया है क्योंकि उनका सम्मान नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी को छोड़कर आगे शिव जी के पास गए। शिव जी के पास आए तो शिव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं क्योंकि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। आपको याद होगा कि जब ब्रह्मा जी ने अपने चार पुत्र चतुष्कुमार को कहा कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रजा उत्पत्ति की आवश्यकता है इस समय, तो चार कुमार जो कि हमेशा कुमार अवस्था में थे, कभी भी इस कुमार अवस्था से बढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो माया जाल में फंसना नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकार किया साफ कि हम विवाह नहीं करना चाहते हैं, हम हमेशा आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो पिता के आदेश का तिरस्कार हुआ, निरादर हुआ, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन कुछ कहे नहीं, केवल आंखों में क्रोध प्रकट हुआ। आंखों से भी बहुत कुछ क्रोध प्रकट हो सकता है, और उनके आंखों के बीच में से फिर रुद्र बाहर चले आए, शिव जी रोते हुए आए बाहर। और उस समय सारे देवताओं ने कहा, मा रोद, मत रोना, क्योंकि रोते हुए आ रहे थे, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। तो इस प्रकार से शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, तो भृगु मुनि के भाई हुए। तो अपने भाई को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे अपने हाथ फैलाकर उनको आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन भृगु मुनि ने जानबूझकर परीक्षा करने हेतु कहा, ठीक, मुझे सुना नहीं, देखो तुम्हारे शरीर पे सब स्मशान की का राख है और सब गले में सांप है, तुम भूत प्रेतों के साथ में घूमते हो, स्मशान भूमि में घूमते हो, अब मेरा शरीर प्रदूषित हो जाएगा। अब शिव जी को आया बड़ा गुस्सा, अपना त्रिशूल लेकर वो आक्रमण करने ही वाले थे, खत्म करने वाले थे भृगु मुनि को, लेकिन वहां पे पार्वती देवी थी। ये स्वामी ऐसा नहीं करना, ये तो आपके भाई हैं और ये ब्राह्मण हैं, ऐसे करना आपको उचित नहीं है, आपको क्रोध को वश में कर लो। तो शिव जी संभल गए। भृगु मुनि ने समझ लिया कि ये भी भगवान नहीं है, मेरे भाई हैं लेकिन भगवान नहीं है। रहे विष्णु, तो विष्णु के पास गए। विष्णु वहां अनंत शेष के ऊपर शैया पर वो आराम कर रहे थे, लक्ष्मी देवी पाद सेवा कर रही थी। तो तुरंत जैसे ही अंदर आए वहां श्वेत तीर्थ में प्रवेश किया, सीधे विष्णु जी के पास गए और विष्णु के वक्ष स्थल में भृगु मुनि ने लात मार दिया। लक्ष्मी देवी देखकर हैरान हो गए, स्वाभाविक है। लेकिन विष्णु उन्होंने क्या किया, जल्दी से उठे, अरे रे रे रे, क्या आपके पैरों को चोट लग गई होगी भृगु मुनि, मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है कि शायद आपके चरणों को चोट तो पहुंची होगी, क्या पहुंची है क्या, देखो मैं मालिश कर लेता हूँ आपके पैरों को। तो भृगु मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मा जी के पास केवल मेरे कार्यों से मैंने उनका अपमान किया था, वो क्रोधित हो गए। शिव जी को मैंने अपने वचनों से क्रोधित किया था, वो क्रोधित हो गए। और यहाँ पर विष्णु को मैंने सबसे ज्यादा अपराध किया, उनके प्रति आक्रमण किया, प्रहार किया उनके ऊपर, वो भी मेरे पैरों से। हाथ से आक्रमण करना एक बात है, लेकिन पैरों से आक्रमण करना और भी बड़ा अपमान माना जाता है। मैंने चरणों से अपमान किया और कहाँ किया, उनके वक्षस्थल में जब वो विश्राम कर रहे थे, और फिर भी विष्णु गुस्से नहीं हुए, बल्कि मेरे पास आकर मेरे पच्चीनों को दबाने लगे कि कहीं आपके चरणों को चोट नहीं पहुंची। तो जब भृगु को बहुत ये एहसास हो गया कि यही भगवान हो सकते हैं, ब्रह्मा और शिव जी नहीं, तो वापस आके उन्होंने घोषणा की कि अभी मैंने संशोधन किया है, रिसर्च कर दिया है, और अभी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि विष्णु ही भगवान है। तो इसलिए हमें भी कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, कौन है भगवान, सब किया हुआ है पहले, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया हुआ है और शास्त्रों में घोषणा भी की हुई है। भगवद गीता में भी भगवान को अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पुरुष है, आप ही सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, और इसलिए मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं। आहुत स्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ हे कृष्ण, ये तो सब बड़े बड़े जो ऋषि हैं, जैसे असित, देवल, व्यास, नारद, ये सब कह रहे हैं, और अभी स्वयं आप भी ये कह रहे हैं, स्वयं च एव ब्रवीषिमे, तो सब लोग ये घोषणा कर रहे हैं, और भृगु मुनि ने देखी थी। तो इस प्रकार से इतिहास में सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने संशोधन कर लिया है, घोषणा कर लिया है कि भगवान कृष्ण या विष्णु ही भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पे भृगु मुनि के पद चिन्ह स्वीकार कर लिए, और अभी तक विष्णु के वक्षस्थल में वो चिन्ह है। तो ये ब्राह्मण जो नवद्वीप से आए थे, जिन्होंने उस धाम के ब्राह्मण का अपमान किया था, वो चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि आप शुद्ध वैष्णव ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं कि आपने भृगु मुनि के पद चिन्ह भी आपके वक्षस्थल पे आपने स्वीकार कर लिए, ब्राह्मण आपके इतने प्रिय हैं, और मैंने ऐसे ब्राह्मणों का अपमान किया, वास्तव में बहुत बुरा किया मैंने। तो इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, ऐसे ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और फिर वो ब्राह्मण ने जाकर दूसरे ब्राह्मण के प्रति क्षमा याचना की कि हे ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ, मैंने आपको समझा नहीं, आप भी मधुसूदन भगवान विष्णु कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं और मेरे लिए आप पूजनीय हैं, तो कृपया क्षमा कीजिए। तो ब्राह्मण भी खुश हो गए। इस प्रकार से ये ज्वर आने की लीला की व्याख्या लोचनदास ठाकुर भी इस तरह से करते हैं। आगे चल के गया में गए भगवान चैतन्य महाप्रभु, वहां पे गदाधर विष्णु वामन देव के पद चिन्ह है, जैसे कल चर्चा हो रही थी, और वहां सभी लोग जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। तो श्राद्ध में क्या अर्पण करते हैं पितरों को, केवल विष्णु प्रसाद ही करना चाहिए, भोग नहीं दिखाना चाहिए पितरों को। और गया में गया प्रसिद्ध क्यों है? भगवान विष्णु के पद चिन्हों की वजह से गया प्रसिद्ध है और इसलिए लोग वहाँ श्राप देने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो विष्णु को, विष्णु के पद चिन्हों को भोग अर्पण करते हैं और वो प्रसाद जो आता है वो अपने पितरों को अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु प्रसाद अपने पितरों को अर्पण किया चैतन्य महाप्रभु ने, और क्योंकि वो पितरों को श्राप देने जा रहे थे इसलिए सची माता उनको ने उनको छोड़ दिया जाने के लिए, क्योंकि सची माता के पिता तो पति तो गुजर गए थे जगन्नाथ मिश्र, उनका बड़ा लड़का तो संन्यास ले चुका था और अभी एक ही सहारा था सची माता का, और वो है हिमाय पंडित। हिमाय पंडित की पहली पत्नी लक्ष्मी देवी, उनका तिरुभाव हो गया था, वो गुजर गई थी, और दूसरी पत्नी वो भी बिल्कुल युवती थी। तो सची माता ने देखा कि निमाय अभी गया जा रहे हैं, तो कहने लगे कि तुम भी अभी चले जाओगे तो मेरे जीवन में तो पूरा अंधकार हो जाएगा। जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए छड़ी होती है, लाठी होती है उसको मार्गदर्शन करने के लिए, वैसे तुम मेरे जीवन में हो, लेकिन फिर भी मैं क्या कह सकती हूँ, पितरों को, तुम्हारे पिता को श्राद्ध अर्पण करने के लिए तुम जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन जल्दी से लौट के आना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मंदिर पर्वत में गए, मधुसूदन का दर्शन किया, पुनपुना नदी में जाके वहां भी उन्होंने दर्शन किया भगवान का, और आगे चल के श्राद्ध अर्पण करते करते वो गया में आकर पहुंचे। गया में प्रवेश, गया धाम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्म कुंड में आए, ब्रह्म कुंड में भी स्नान किया, श्राद्ध अर्पण किए, अलग अलग जगह में निमय पंडित ने श्राद्ध अर्पण किए अपने पितरों को। फिर चक्रवेड़ आए जहाँ पर भगवान गदाधर विष्णु के पद चिन्ह सुशोभित थे, वहां पे भी उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से भगवान विष्णु के गुणगान सुने। ये गुणगान सुनकर भाव विभोर हो गए, ये चर्चा भी कल हुई थी, और पहली बार इस लीला में चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने भक्ति के लक्षण प्रकट किए। भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आकर जो अष्ट सात्विक विकार है उनके शरीर में होने लगे, अश्रुधारा इत्यादि, और ठीक उसी समय ईश्वरपुरी वहां पर देव या योग से वो वहां पर आए। कल ये भी चर्चा हुई थी कि पहली बार किशोर लीला की शुरुआत में हिमाय पंडित ने नवद्वीप में ईश्वरपुरी का दर्शन किया था और उनका संग काफी समय के लिए 7 महीनों तक किया था, और उसके बाद 5 साल बाद में अब यहाँ चक्रवेड़ में भगवान गदाधर विष्णु के पद चिन्हों के स्थल में स्थली में उन्होंने ईश्वरपुरी का दोबारा दर्शन किया। जैसे ही ईश्वरपुरी का दर्शन किया तो उनको दंडवत किया उन्होंने, ईश्वरपुरी भी बड़े प्रसन्न हुए हिमाय पंडित को देखकर, उन्होंने आलिंगन किया और आलिंगन करके उन्होंने दोनों के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था दिव्य आनंद में, और फिर निमाय पंडित ने बड़े नम्रता से वो कहने लगे कि जब से मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है मेरा गया धाम आना सफल हो गया। तो इस प्रार्थना में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं लेकिन वहाँ कोई महान वैष्णवों का संग नहीं करते हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा निष्फल है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, यस्यात्म बुद्धि कुण पेत्रि धातु के स्वधि कलत्रादिश भौम इच्छति यत् तीर्थ बुद्धि सल्लेन परिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो व्यक्ति सोचता है यस्य आत्म बुद्धि कुण पे त्रि धातु के, कुण पे मतलब ये शरीर, अपने शरीर जो कि 3 धातुओं का बना हुआ है कफ पित्त वायु, इसको स्वयं अपना मैं समझता हूँ कि ये मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। दूसरा, जो व्यक्ति स्वधि कलत्रादिषु अपने पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को अपना समझता है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरा घर है, जो ऐसा व्यक्ति होता है। तीसरा, भौम इज्जति, जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने जिस भूमि में जन्म लिया है वो भूमि पावन है, वो भूमि पूजनीय है, क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ, वो व्यक्ति तीसरा। और चौथा, यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन परिचित जनेशु अभिज्ञेशु, जो तीर्थ स्थान में जाता है केवल स्नान करने के लिए, सलिले मतलब किसी कुंड में नदी में स्नान करने जाता है बस, लेकिन जनेशु अभिज्ञेशु, लेकिन वहां के महान वैष्णवों का संग नहीं करता। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, स एव गो हरह, गाय और ऊंट के बराबर है, क्योंकि उनकी पशु बुद्धि है। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत का मत ये है कि तीर्थ स्थान में केवल स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें भक्तों का संग करने जाना चाहिए, हमें कथा कीर्तन करने के लिए जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि लोग कलकत्ता में रहते हैं, जहाँ से गंगा गुजरती है, हुगली नाम है वहाँ, लेकिन वहाँ स्नान नहीं करते, वो अलाहाबाद जाते हैं स्नान करने या कहीं दूसरे स्थान में जाते हैं, सोचते हैं कि ये गंगा जल अलग है, वो गंगा जल अलग है, क्योंकि ये हमारे घर के पास है, कि दूर जाते हैं स्नान करने के लिए। तो ऐसे स्नान करने से क्या मतलब, जब गंगा जी में ही स्नान करना है तो कलकत्ता के पास में है, वहां पे स्नान कर लो। अगर दूर तीर्थ स्थान में जाना है तो भक्तों के संग में जाओ, वहां उस तीर्थ स्थान में जाकर उस स्थान का महात्म्य सुनो, भक्तों के संग में कथा करो, कीर्तन करो, तो फिर हमारे तीर्थ यात्रा सफल मानी जाती है। तो ये बात जो मैं पंडित ने ईश्वरपुरी से कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे निमय पंडित कहने लगे कि यहाँ पर लोग गया में आते हैं पिंड और तर्पण अपने पितरों को अर्पण करने के लिए, मतलब जब अपने पितरों को जल अर्पण किया जाता है उसको तर्पण कहते हैं, और जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको पिंड कहते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, ये पिंड क्या होना चाहिए, केवल विष्णु प्रसाद होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, मैं बेलगाम में भी सुना, एक भक्त बता रहे थे कि कोई उनके पड़ोसी और कोई है रिश्तेदार, वो बोल रहे हैं कि हमारे जो बीते हुए जो भी रिश्तेदार हैं उनको मांसाहार बहुत पसंद था, इसलिए जब हम छत पे उनके लिए पिंड रखेंगे तो मांस रखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये एक तमोगुणी कार्य है, पिंड रखना है तो केवल विष्णु प्रसाद रखना चाहिए और कुछ नहीं रखना चाहिए। और जो अनन्य भाव से हरि का भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, जैसे कल चर्चा हो रही थी, तो ऐसे सब चीजें करने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी निमाय पंडित ने एक उदाहरण पेश किया। फिर निमाय कहने लगे ईश्वरपुरी से कि यहाँ पर लोग विष्णु प्रसाद का पिंड देते हैं अपने पितरों को, लेकिन यहाँ पिंड अर्पण करने से क्या होता है कि केवल जिस पितर के लिए हम अर्पण कर रहे हैं उनका उद्धार होता है, दूसरों का नहीं होता। आप पिताजी के लिए कर रहे हैं तो पिता के आत्मा का उद्धार होता है, या अगर आप केवल पितरों के लिए कर रहे हैं तो जो भी आपके वंश में हैं, आपके पूर्वज हैं, उनका उद्धार होगा। लेकिन निमाय पंडित ने कहा कि आपका दर्शन करने मात्र से ही लाखों लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। ये है वैष्णव ठाकुर की शक्ति, उसके अंदर ये आध्यात्मिक बल होता है कि जो व्यक्ति उनका दर्शन मात्र करता है उसकी बात तक दूर है, उसके कितने हजारों जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उनका उद्धार हो जाता है, पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। गंगार पराश हुए पश्चात पवन, तुम्हारा दर्शन कोई एक तुम्हारा गुण है। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि हे वैष्णव गोसाई, गंगा जी में बार बार स्नान करने से आदमी शुद्ध हो जाता है, दर्शन पवित्र करो एक तुम्हारा गुण, लेकिन आपके गुण ऐसे हैं कि आपके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद को भी भगवान नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब प्रहलाद के सामने नरसिंह देव प्रकट हुए और नरसिंह देव ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तुम कोई आशीर्वाद मांगो, कोई वरदान मांगो मेरे से, तो प्रहलाद ने कहा था कि मैं तो कोई व्यापारी नहीं हूँ, आपके साथ मैं व्यापार करने नहीं आया, कि मैंने आपका भजन किया और आपने मुझे कुछ बदले में दे दिया, नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। और आगे चल के जब नरसिंहदेव ने कहा नहीं नहीं कुछ तो मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता जो कि बड़े दुष्ट व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बहुत सताया और आपको भी बहुत सताया, आपके विरुद्ध वो गया, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनका उद्धार हो। ये है भक्त के गुण। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रति इतना अन्याय किया है तो वो नरक में जाए, नहीं, वो सोचते मेरे प्रति कितना भी अन्याय किया क्यों ना हो, लेकिन मुझे करुणा की दृष्टि रखनी चाहिए उसके प्रति। तो हिरण्यकश्यप ने कितना सताया था प्रहलाद को, लेकिन फिर भी प्रहलाद के मन में हिरण्यकश्यप के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं थी, बल्कि यहाँ प्रहलाद नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिता का उद्धार कीजिए। उस समय नरसिंहदेव भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद डरो नहीं, तुम्हारे पिता तो क्या, तुम्हारे 21 पीढ़ियां पावन हो गई हैं, क्योंकि तुम भक्त बन गए हो। तो जिस कुटुंब में कोई भी व्यक्ति भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त बनता है, उसकी 21 पीढ़ियां वो शुद्ध हो जाती हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं, और अगर कोई नरक में है तो वहां से भी उनका उद्धार हो जाता है केवल भक्त बनने से। तो देखिए घर में एक भी व्यक्ति भक्त बना तो कितना लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार के सदस्य सोचे चलो घर में अपना एक हो गया ना, अभी हमें नहीं बनना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, नहीं, केवल पापों से थोड़ा बहुत हम मुक्त हो सकते हैं, नरक में जाए तो वहां से थोड़ा बहुत मुक्त हो सकते हैं एक शुद्ध भक्त की वजह से, लेकिन भगवान के धाम में जाना है तो हमें खुद भक्त बनना चाहिए, अपने ही प्रयास से हम जा सकते हैं। तो खैर इस प्रकार से रमाई पंडित ने कहा कि हे ईश्वरपुरी महाराज, आपके गुण ऐसे हैं कि यहाँ गाया आने का जो मेरा कार्य है वो सफल हो गया केवल आपको दर्शन करने से। अगर मैंने यहाँ पिंडदान नहीं भी किया होता, लेकिन आपका दर्शन मात्र किया, इससे ही मेरी गाया यात्रा सफल हो गई। और आप तो तीर्थ स्थान के समान हैं, तीर्थ स्थान से श्रेष्ठ हैं आप स्वयं, क्योंकि तीर्थ स्थान को ही आप तीर्थ स्थान बनाते हैं, तीर्थ स्थान को ही आप शुद्ध करते हैं। और यही प्रार्थना युधिष्ठिर महाराज ने अपने रिश्तेदार विदुर को दिया था, जब विदुर तीर्थ यात्रा में गए थे और फिर वापस लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए थे विदुर को देखकर। विदुर तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की, भवत विदा भगवत तीर्थ भूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः तेन गदाभ्रता, कि हे विदु, विदुर जी धन्य हो, आप तो महान भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और आप चलते फिरते एक तीर्थ स्थान है, स्वयं तीर्थ आप हैं, और इतना ही नहीं आप तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जहाँ भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है और तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध करने वाले आप हैं। क्यों? स्व अंतःकरण गदाभृता, क्योंकि आपके अंतःकरण में गदा धारण करने वाले विष्णु वो विराजे हैं, और इसलिए आप जहाँ भी चलते हैं वो भूमि पावन हो जाती है और आप तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं। क्योंकि तीर्थ स्थानों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, पाप करते हैं और फिर छुट्टी लेकर जाते हैं पाप को धोने के लिए, फिर से अपने जगह आ जाते हैं, पाप करना शुरू करते हैं, जब पाप की पूंजी बढ़ जाती है, कष्ट होने लगते हैं, फिर से जाते हैं पाप धोने के लिए। लेकिन मन्ये कुंजर शौचवत, ये भी एक हाथी के स्नान के बराबर है, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो जाती है तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करने से, केवल भक्ति करने से ही पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति काष्ठेन निहारम् इव भास्करः। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में बताते हैं कि जब हम वासुदेव परायण वासुदेव के प्रति भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति, केचित केवलया भक्ति, केवला भक्ति, केवला भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, जिसमें कोई भौतिक कामना नहीं है, जिसमें ज्ञान का कर्म का मिश्रण नहीं है, जो शुद्ध भक्ति है। ऐसी भक्ति जब भक्त करता है तो क्या होता है, अघम धुन्वन्ती कार्ष्णेन, अघम मतलब पाप, धुन्वन्ती मतलब नष्ट करना, कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, कार्ष्णेन मतलब संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, जड़ से पाप उखड़ जाता है हृदय से। किस प्रकार से, जैसे निहारम एव भास्कर, जब कभी धुंध या कोहरा पड़ जाता है तो उस कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमें अंधकार सा हो जाता है, खास करके ठंडी के समय में दिखाई पड़ता है। लेकिन जब भास्कर या सूर्य का उदय हो जाता है तो सूर्य के किरणों से वो जो धुंध है या कोहरा है नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार से वातावरण स्वच्छ और साफ हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कृष्ण भक्ति का उदय हृदय में हो जाता है तो जो पाप रूपी जो धुंध हमारे हृदय में है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल धाम में जाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं, धाम में जाने का उद्देश्य है कि ईश्वरपुरी महाराज जैसे भक्तों का संग करें, उनके चरण कमलों में हम कुछ उपदेश ग्रहण करें, ये उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से निमाय पंडित ने हम सबको सिखलाया है कि महान वैष्णव का महत्व क्या होता है, वैष्णवों के संग का लाभ क्या होता है, और तीर्थ स्थान में हमें कैसे जाना चाहिए, किस भावना से जाना चाहिए। निमाय पंडित के इन मधुर वचनों को सुनकर ईश्वरपुरी भाव बोध हो गए, आलिंगन किया निमाय पंडित का और कहने लगे कि अरे निमाय, तुमने जो बातें कही हैं ये बिल्कुल अमृत की धारा के बराबर है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि तुम स्वयं भगवान के अवतार हो, नहीं तो भला तुम्हारे अंदर इतना अद्भुत विशेष ज्ञान, तुम्हारे अंदर ऐसे दिव्य गुण, ऐसे सौंदर्य, ये तो संभव नहीं है, केवल भगवान में ये सब हो सकता है। और वैसे भी जब से मैंने तुम्हें देखा है 5 साल पहले नवद्वीप में, मैं तुम्हारे बारे में सतत सोचते रहता हूँ, तुम कभी भी मेरे हृदय से गए नहीं हो, और बल्कि मेरा आनंद तब से बढ़ते रहा है, और अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ मुझे वही आनंद मिल रहा है जब मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखता हूँ। इसका मतलब है कि तुम साक्षात वही श्री कृष्ण हो। देखिए, भगवान जितना भी अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं, भक्तों से छुपे नहीं जा सकते, और भगवान जितना भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, अभक्त उनको समझते नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में, अपने स्वयं के रूप में प्रकट हुए, लेकिन कितने ऐसे असुर थे, शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन इत्यादि, जो उनको समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अपने आप को ढक लिया है, वेश बदल लिया है, कभी घोषणा नहीं की थी कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी ने बराबर उनको पहचान लिया। और गौरलीला में हम ये भी देखते हैं कि हरिदास ठाकुर ने भी ऐसे ही भगवान से कहा था, चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप हमको धोखा देने का प्रयास नहीं करो, आप दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन भक्तों को धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि भक्त आपको पहचान गए हैं, आप तो वही कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है। तो भगवान जितना भी चाहते हैं भक्त को धोखा डालने के लिए, देने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि भक्त भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, भगवान से ज्यादा बुद्धिमान भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी निमाय पंडित को पहचान गए, और उस समय निमाय पंडित ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपकी कृपा है, हमारे ऊपर है, बस आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ, मेरी गया यात्रा सफल हो गई। और इस तरह से थोड़े समय के लिए चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी के बीच में वार्तालाप हुआ, कृष्ण कथा हुई, और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि इनके बीच में जो कथा हुई इतनी गुह्य बातें हैं कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति में कि आगे चलकर कभी वेद व्यास शायद इस संवाद को प्रकाशित करेंगे। अभी तक तो नहीं किया वेद व्यास जी ने, शायद आगे चल के कभी करें। और फिर निमाई पंडित ने याद किया कि हाँ मेरी ये लीला है, मुझे पिंडदान करना है अभी तक, तो उन्होंने ईश्वरपुरी से अनुमति ली कि मुझे और पिंडदान के लिए जाना है, तो फिर वो आगे चले गए। गया के पास में और एक नदी है जिसका नाम है फल्गु, फल्गु नदी। ये फल्गु शब्द आपने सुना है। रूप गोस्वामी दो प्रकार का वैराग्य बताते हैं, किसी को पता है दो प्रकार के वैराग्य कौन से होते हैं? वैसे तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मर्कट वैराग्य। मर्कट वैराग्य मतलब बंदर का वैराग्य। बंदर का वैराग्य कैसे होता है? बंदर कहाँ रहता है? उसके क्या कोई दो बेडरूम वाला किचन वाला घर रहता है? नहीं, बंदर जंगल में रहता है, उसका कोई घर नहीं है। पेड़ कभी एक पेड़ पे, कभी दूसरे पेड़ पे, एक डाली पे भी नहीं, डाली भी बदलते रहता है, शाखा भी बदलती रहती है। उसके पास कोई सूट बूट होता है? कोई कपड़े नहीं। उसके पास कोई रसोई घर होता है, उसमें सब अनाज भर के रखता है? नहीं। तो बंदर का जीवन कैसे होता है? केवल भगवान के ऊपर निर्भर, ऐसा लगता है हमें, है ना? उसके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं, कोई धन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा वैराग्य क्या वास्तविक वैराग्य है? बंदर जितना इंद्र तृप्ति करने वाला पशु शायद कहीं नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंद्र तृप्ति तो बंदर ही करता है। केवल उसे साधन प्राप्त नहीं होते इसलिए वो शायद कम करता होगा, लेकिन बंदर सबसे ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है। तो इस प्रकार का वैराग्य जहाँ कोई केवल बाहरी दिखावा कर रहा है लेकिन वास्तव में बहुत इंद्र तृप्ति करता है, भोग करता है, ये मर्कट वैराग्य है। लेकिन और दो प्रकार के वैराग्य हैं जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। एक है युक्त वैराग्य, जो सच्चा वैराग्य है, जो भक्त ही कर सकता है। अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य मतलब सही सही वैराग्य। इसमें क्या है? अनासक्त विषयान, ये संसार के जो विषय है, संसार के वस्तु हैं, उनके प्रति निरासक्त होकर, विरक्त होकर हम क्या करते हैं? यथारम उपयुंज, कहा उसको प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में। निर्बंध कृष्ण संबंधे, क्योंकि हम इन चीजों का संबंध भगवान कृष्ण से देखते हैं, तो ऐसे वैराग्य को सही वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य। मतलब हम सारे संसार के चीजों को, गाड़ी हो, पैसा हो, ये माइक्रोफोन हो, आधुनिक तकनीकी ज्ञान हो, जो भी हो, हम इन सब का संबंध भगवान से देखते हैं, क्योंकि ये सब भगवान की वस्तुएं हैं। ये माइक्रोफोन भगवान का है, ये गाड़ी भी भगवान की है, पैसा भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो सब कुछ जब भगवान का है तो फिर भगवान की सेवा में क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इसको? लेकिन हमारी इंद्र तृप्ति के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए अनासक्त विषयान। तो भगवान के वस्तुओं को अपने इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल न करते हुए केवल भगवान की सेवा में जब इस्तेमाल किए जाते हैं, हम इन चीजों को एकत्र कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, ये सच्चा वैराग्य होता है। इसको युक्त वैराग्य रूप गोस्वामी कहते हैं। लेकिन और एक प्रकार का वैराग्य है जिसको रूप गोस्वामी फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु वैराग्य मतलब क्या? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो फल्गु वैराग्यं कथ्यते। जब कोई व्यक्ति जो मुक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहता है, मुमुक्षुभिः, और वो देखता है उसकी बुद्धि क्या है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, ये सारे वस्तुएं जो बाहर दिखाई पड़ती हैं, जो हरि के वस्तु हैं, भगवान कृष्ण की संपत्ति है, लेकिन इनको किस बुद्धि से, किस दृष्टि से देखता है? प्रापंचिकतया बुद्धिया, मतलब उसको समझता है कि ये प्रपंच है, ये तो केवल भौतिक है, ये चीजें भगवान की नहीं, ये तो भौतिक चीजें हैं, इसलिए परित्यागो उनको त्याग करता है। मैं उनको छूंगा नहीं क्योंकि मैं वैरागी हूँ और ये सब चीजें माया है, ये सब भौतिक है, ये तो प्रपंच है, मैं उसको छूंगा नहीं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं, झूठा वैराग्य, अपूर्ण वैराग्य। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि कई ऐसे साधु होते हैं जब कोई उनको दान देने आता है, कोई पैसा देने आता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो वैरागी हूँ, मैं पैसे को छू नहीं सकता क्योंकि पैसा ये माया है, ये झूठ है। तो प्रभुपाद कहते थे लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं और हम पैसे को या किसी भी दूसरी चीज को माया नहीं समझते। हम समझते हैं कि पैसा भी लक्ष्मी देवी है और लक्ष्मी देवी की को कहाँ सेवा करती है, वो तो नारायण की सेवा करती है। तो लक्ष्मी देवी का प्रयोग नारायण की सेवा के लिए करना चाहिए, अपनी सेवा के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर मुझे आके कोई धन दे तो मैं खुशी से स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। तो जो लोग भगवान के वस्तुओं को भौतिक समझते हैं, माया समझकर भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन अपने भी सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको अपूर्ण वैराग्य कहते हैं, फल्गु वैराग्य। तो प्रश्न ये आता है कि फल्गु शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं रूप गोस्वामी। अब यहाँ ये प्रश्न चल रहा है, यही गया के पास में जो नदी है फल्गु नदी, इसमें विशेषता क्या है आप जानते हैं? फल्गु नदी, आप में से कोई गया गए हैं तो ये फल्गु नदी ऊपर से केवल बालू है, रेती, और नदी ये बालू के नीचे है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है वो सोचेगा तो बालू है, वो ऊपर चलेगा, उसके चलेगा सीधे पानी में गिर जाएगा, उसको मालूम नहीं कि बालू के नीचे पानी है, तो धोखे का है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो होशियार रहता है, सावधान रहता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार के वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो ये भी खतरे का खतरे की बात है, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता, हमेशा ये इन चीजों के प्रति आकर्षण पुनः होने की संभावना रहती है। लेकिन जब इन चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं फिर कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि तो फल्गु नदी ये धोखे की नदी है, इसलिए ऐसे वैराग्य को रूप गोस्वामी फल्गु वैराग्य कहते हैं। तो वहां पर प्रथा ये है कि उस बालू को लेकर उसी से वो श्राद्ध अर्पण करते हैं। अलग अलग तीर्थ स्थानों में अलग अलग तरह के तरह से श्राद्ध किया जाता है। तो यहाँ फल्गु नदी के पास में बालू लेकर निमाय पंडित ने अर्पण किया श्राद्ध। फिर फल्गु नदी से आगे चल के प्रेत गया में गए, प्रेत गया, अलग अलग तरह के गया है, और वहां पे पहाड़ के ऊपर गए, प्रेत गया वहां पर है, वहां पर जाकर उन्होंने क्रियाएं किए, ब्राह्मण उनको आदेश देते थे ऐसे करो, ये मंत्र बोलो, ये इधर रखो, वो उधर अर्पण करो, जैसे जैसे ब्राह्मण बोलते थे वो वैसे करने लगे। वहां के ब्राह्मण थोड़े लोभी थे, जैसे ज्यादातर तीर्थ स्थानों में देखा जाता है, हाथ धोकर दक्षिणा के लिए पड़ते हैं पीछे, तो यहाँ पे भी लोग ऐसे थे। और वहां के ब्राह्मण जो हैं, वो लोगों को लोगों से इतना सम्मान मांगते थे, कभी कभी लोगों से अपने चरणों के अपने पैरों की पूजा वगैरह कराते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये ब्राह्मणों को नहीं मालूम था कि कितना अपराध वो एकत्र कर रहे हैं अपने सर के ऊपर, दूसरों की ऐसे पूजा स्वीकार करके, जबकि वो योग्य नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन ब्राह्मणों को केवल अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं दूसरे लोग बहुत सारा धन इत्यादि दक्षिणा में देते थे उन ब्राह्मणों को, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, केवल मधुर वचनों से उनको दक्षिणा दिया, उनको संतुष्ट किया, और इस प्रकार से वहां से निकल पड़े। आगे प्रेत गाया से वो आए दक्षिण मानसा, उस स्थान में जो उन्होंने पिंडदान किया, आगे चल के वो राम गया में आए, श्री राम गया। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने त्रेता युग में श्राद्ध किया था, पिंडदान अर्पण किया था, इसको श्री राम गया कहते हैं। तो इसी स्थान पर वही श्री राम जो कि द्वापर में कृष्ण के रूप में आए थे और कली में निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उन्होंने उसी स्थल में फिर से पिंडदान किया, श्राद्ध किया। फिर वहां से आगे चले और एक गया में आए जिसको युधिष्ठिर गया कहते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने पांडवों के साथ श्राद्ध किया था। युधिष्ठिर महाराज के प्रेम से फिर उन्होंने यहाँ भी श्राद्ध अर्पण किया और यहाँ के पंडित जो है, जो ब्राह्मण थे, वो तो व्यंजन अर्पण किए तो सारे ब्राह्मण उनके ऊपर टूट पड़े, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। और निमाय पंडित ने यह दृश्य देखकर वो केवल हंसे, तो कुछ बोले नहीं लेकिन उन ब्राह्मणों को। और वहां से आगे चलते चलते वो अलग अलग और तीर्थ स्थानों में गए, जैसे उत्तर मानस, फिर आगे चल के भीम गया, शिव गया, ये अलग अलग गए स्थान है जहाँ भीम ने श्राद्ध किया था, जहाँ शिवजी के लिए शिवजी ने श्राद्ध किया था। तो ऐसे ये अलग अलग स्थान है। फिर षोडश गया में आए। षोडश गया मतलब वो स्थान जहाँ 16 प्रकार के उपचारों से श्राद्ध अर्पण किया जाता है। षोडश मतलब 16। तो वहां पर भी उन्होंने पिंड किया निमाय पंडित ने। और आगे चल के फिर ब्रह्म कुंड में फिर से आए, वहां स्नान किया और वहां से आगे चल के वो गयाशीर में लौट कर फिर से ईश्वरपुरी के गांव में गए जिसका नाम था कुमारहट। जब कुमारहट में प्रवेश किया तो ईश्वरपुरी के याद में उनके आंखों से आंसू आने लगे, जोर जोर से ईश्वरपुरी के नाम को पुकारने लगे और वहां की थोड़ी मिट्टी लेकर अपने कपड़े में उन्होंने बांध लिया। ये जो भूमि इतनी पावन है क्योंकि यहाँ पर मेरे आराध्य प्रभु ईश्वरपुरी यहाँ पर प्रकट हुए थे। और ऐसे फिर वो लौट कर आए और बाद में निमाय पंडित ने ईश्वरपुरी को अपने घर में निमंत्रण करना चाहा लेकिन मौका नहीं मिला। जब निमाय पंडित अपने निवास स्थान में गया में वापस आए तो एक दिन वो पका रहे थे भोजन, खुद पकाते थे, और जैसे ही वो पका रहे थे अचानक ईश्वरपुरी दरवाजे से अंदर आए उनके घर में। ईश्वरपुरी तो महाभागवत है, इसे हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहा करते थे। 24 घंटे कृष्ण का कीर्तन चलता था और कृष्ण के विचार में ही हमेशा मग्न रहते थे, भाव विभोर रहते थे हमेशा। जैसे एक आदमी जो शराब पी के उन्मत्त रहता है, उसको पता नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति ये भी एक प्रकार का आध्यात्मिक नशा है। जो वास्तव में इसका स्वाद पहचानते हैं वो दिन भर इस नशे में झूमते रहते हैं। तो ईश्वर पूरी भी हे कृष्ण कहते हुए इधर उधर जाते थे और ऐसे ही झूमते हुए वो निमाय पंडित के निवास स्थान में अंदर आए। और जब निमाय पंडित ने उनको देखा बहुत प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, बिठाया एक स्थान में। ईश्वरपुरी ने देखा कि निमाय पंडित अभी भोजन बना रहे हैं तो हंसकर ईश्वरपुरी बोलने लगे, बराबर सही समय पे आया मैं। तो निमाय पंडित बोले, हाँ मेरा तो सौभाग्य है कि आप इस समय मेरे कुटिया में आए हैं, तो कृपया आप भोजन स्वीकार कीजिए, प्रसाद लीजिए। तो ईश्वरपुरी ने देखा कि अरे तुम्हारे अकेले के लिए यहाँ पर प्रसाद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसमें कोई बात नहीं, मैं तो केवल जल्दी से मेरे लिए बना लूंगा, आप लीजिए। ईश्वरपुरी ने कहा, नहीं नहीं, जो अभी है आधा आधा करके हम ले लेते हैं। तुम्हारे पंडित ने कहा, नहीं नहीं, कृपा कीजिए मेरे ऊपर, इतना आप लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी प्रसाद मेरे लिए बना सकता हूँ। फिर अंदर जाके निमाय ने प्रसाद बनाना शुरू किया और फिर से बाहर आए और ईश्वरपुरी को प्रसाद दिया और ईश्वरपुरी बड़े संतुष्ट हुए प्रसाद ग्रहण करके। उधर रसोई घर में एक बहुत अद्भुत घटना हुई। क्या हुआ कि स्वयं रमा देवी वे लक्ष्मी देवी जो कि नारायण की पत्नी है, नारायण की सेवा करने के लिए रसोई घर में उनके लिए पकाने के लिए आ गए, क्योंकि उनके स्वामी ने जो पकाया था वो ईश्वरपुरी को दिया था। तो अभी रमा देवी खुद आकर उनके स्वामी के लिए पकाने के लिए वो तैयार हो गए। और जब ईश्वरपुरी और निमाय पंडित ने वहां बातचीत कर ली, फिर उसके बाद निमाय पंडित ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने खुद दिखाया कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए उनको सेवक वत्सल या भक्त वत्सल कहते हैं। अपने भक्तों के प्रति इतनी प्रेम भावना रखते हैं, स्वयं भगवान हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अपने भक्त के लिए खाना पकाया, प्रसाद बनाया और उनको खिलाया। ये है भगवान की विशेषता कि वो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन की सेवा एक दास के रूप में की थी, वो उनके ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, और जैसे भी अर्जुन आदेश देते थे बाएं फिरो दाएं फिरो युद्ध भूमि में, वैसे कृष्ण रथ को ले जाया करते थे। तो ये है भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो अपने निवास स्थान में चले गए। अगले दिन सुबह को जब निमाय पंडित ईश्वरपुरी के पास में आए, तो उन्होंने ईश्वरपुरी से निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। तो उस समय ईश्वरपुरी ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ, तो दीक्षा की क्या बात है। ईश्वरपुरी तो जानते थे कि ये तो स्वयं भगवान है, उनको क्या वो दीक्षा दे सकते हैं, भगवान ही तो दीक्षा देने वाले हैं, आदि गुरु तो भगवान ही हैं। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी ने समझाया कि ये सेवा है मेरे लिए, क्योंकि अभी भगवान आए हैं इस रूप में, कुछ लीला कर रहे हैं, उनका कुछ उद्देश्य है, तो भगवान की योजना में मुझे शामिल होना चाहिए और मेरी सेवा इस समय ये है कि गुरु के रूप में उस समय दीक्षा मंत्र मुझे देना है। फिर ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित जी कान में दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया, दस अक्षरों का मंत्र, और इस दीक्षा देने के बाद में ईश्वरपुरी अपने जगह चले गए। और इसके बाद में निमाय पंडित के हृदय में कृष्ण भक्ति की भावना तीव्र से तीव्र, तीव्र अति तीव्र होते लगी। प्रतिदिन ये भक्ति की तीव्रता बढ़ती गई और निमाय पंडित हमेशा ऐसे कृष्ण के विचार में, स्मरण में मग्न रहते थे, भाव भोग हो जाते थे। और एक दिन जब वो इस मंत्र के, दीक्षा के मंत्र के ऊपर ध्यान कर रहे थे अपने अंतःकरण में, उस समय अचानक उनके हृदय में जो भगवान के प्रेम की विरह भावना थी वो प्रकट होने लगी। अचानक जोर जोर से कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, कहाँ गए हो, कहाँ मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ हमसे छुपे हुए हो। तो जोर जोर से इधर उधर भागने लगे और जमीन में लौट गए और उनके शरीर में सब जगह धूल लग गया और फिर से स्तब्ध हो जाते। फिर उठकर ऐसे ही बोलने लगते कि कहाँ गए कृष्ण हमें छोड़कर, अभी अभी हाथ थे, कहाँ पर चले गए। तो ऐसे विरह भावना प्रकट करने लगे। उनके शिष्यों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, कभी भी निमाय पंडित का ये रूप उन्होंने नहीं देखा था। ये पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने विरह की भावना प्रकट की। चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति करना सिखाया, लेकिन जो भक्ति उन्होंने हमें सिखाई करने के लिए उसके भी कोई विशेष गुण है। भक्त तो इतिहास में बहुत हुए हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त जो विष्णु के भक्ति हैं, वो नारायण या विष्णु के रूप में भगवान की पूजा करते थे। और जिन्होंने कृष्ण भगवान की भी पूजा की, उनकी उपासना की, वो या तो द्वारका के कृष्ण की उपासना करते थे या मथुरा के कृष्ण की उपासना करते थे। बहुत कम लोग हैं जो वृंदावन के कृष्ण की उपासना करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हमें वृंदावन के श्याम सुंदर गोविंद ये कृष्ण की उपासना भक्ति करने के लिए वो आए हैं सिखाने के लिए। और वृंदावन के कृष्ण ही नहीं लेकिन वृंदावन के कृष्ण का प्रेम जो गोपियों ने किया कृष्ण भगवान के प्रति, वो प्रेम को सिखलाने आए हैं। वृंदावन में सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध तरह से प्रेम करते थे। वृंदावन ये चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम मतलब वहाँ का कण कण चेतन है, वहाँ का कण कण कृष्ण भक्ति के से गूंजता है। हर लता, हर पत्ता, हर फूल, यहाँ तक हर पत्थर वहाँ कृष्ण कृष्ण कहता है। कृष्णमय है पूर्ण वृंदावन, ये है वृंदावन की परिभाषा। वहाँ कोई भी जड़ वस्तु नहीं है, हालांकि हमारी दृष्टि जड़ है इसलिए हमें सब वस्तुएं जड़ दिखाई पड़ती हैं वृंदावन में, लेकिन वास्तव में ये है चिन्मय धाम। तो जो वहाँ के गाय हैं, वहाँ के वृक्ष हैं, वहाँ का घास है, वहाँ का जल है, ये भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसको कहते हैं शांतरस, क्योंकि इनके भीतर सेवा की भावना ज्यादा तीव्रता से विकसित नहीं है, इसको शांतरस कहते हैं। इसके आगे वृंदावन में और भी बहुत भक्त हैं जो उनको दास रूप में सेवा करते हैं, जैसे उनका बिस्तर बनाना और कई तरह के। माता यशोदा और नंद महाराज के घर में बहुत लोग ऐसे आकर कृष्ण की सेवा करते थे, तो इसको दास्य रस कहते हैं। तो दास्य रस में भी भक्ति करने वाले बहुत सारे थे ब्रज में, वृंदावन में। और इसके ऊपर थे कृष्ण के मित्र सखा, जो ग्वालपाल थे, जो भगवान श्री कृष्ण को मित्र के रूप में देखते थे और ऐसे मित्रता के भावना में प्रेम करते थे। और फिर है नंद महाराज, यशोदा माता और अन्य वरिष्ठ गोप और गोपियां। ये कृष्ण को प्रेम करती थी माता पिता अपने आप को समझ के और कृष्ण को अपना बच्चा समझ के, ये भी भावना बहुत ऊंची भावना है। तो ऐसे भावना में प्रेम करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध। रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, जो व्रज वधु गोपियों ने प्रेम किया कृष्ण के प्रति वो प्रेम श्रेष्ठ है। तो वो प्रेम सिखाया माधुर्य रस का, जब भगवान को एक प्रेमी के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसे मधुर रस के भी दो विभाजन हैं। एक द्वारका की जो रानियां हैं वो भी द्वारका के कृष्ण को अपने पति समझकर प्रेम करती थी, सेवा करती थी, भक्ति करती थी, और वृंदावन की गोपियां भी करती थी। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन की गोपियां, उनका उनकी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और गोपियों के प्रेम में भी दो विभाजन है, एक है मिलन में और दूसरे है विरह में। जब कृष्ण वृंदावन में थे और गोपियां कृष्ण के साथ में रासलीला कर रही थी, तो मिलन में अवश्य उनको बहुत तीव्र आनंद, दिव्य आनंद मिल रहा था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, अक्रूर उनको बुलाने के लिए आए कि कंस ने बुलाया है, एक कुश्ती की प्रतियोगिता है, तो वो कृष्ण को ले गए। कृष्ण वृंदावन के निवासियों को बोलकर गए कि मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा, लेकिन गोपियां और अन्य ब्रजवासी सोच रहे थे कि कब आएंगे, न जाने कब आएंगे। कृष्ण तो आए नहीं, और हर एक दिन जो ब्रजवासी थे और खास करके गोपियां, वो सुबह सुबह देखती थी मथुरा की ओर कि कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं। दिन भर देखती रहती थी, अपने काम करती लेकिन ध्यान उधर है, और शाम को निराश हो जाते थे कि अरे कृष्ण अभी तक आए नहीं। और फिर सोचते ठीक है आज नहीं आए कल सुबह अवश्य आएंगे, और इसीलिए वो रात को जीवित रह पाते थे इस आशा से कि कल सुबह कृष्ण आने वाले हैं। फिर अगले दिन सुबह हो जाता था, फिर से कृष्ण का रची रहा देखते थे, कहाँ है कृष्ण, उस दिन भी कृष्ण नहीं आते, ऐसे दिन बीतता जाता था। तो इस विरह की भावना में जो वो कृष्ण का चिंतन करते थे, वो जो प्रेम या स्मरण था वो इतना तीव्र है कि मिलन से भी ज्यादा ये श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए ये सेवा को, ये प्रेम को विप्रलंब सेवा कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव ग्रहण किया गोपियों का विप्रलंब सेवा का, और इस भाव में जो भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण को ढूंढता रहता है कि कहाँ है कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने न केवल माधुरी रस का प्रदर्शन किया और इसको हमें सिखाया, न केवल गोपियों का प्रेम सिखाया, लेकिन गोपियों का जो प्रेम था विप्रलंब में, विरह में, वो प्रदर्शित किया। और इस समय ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद पहली बार उन्होंने ये विप्रलंब सेवा प्रकट कराया। तो ये सबसे ऊंची भक्ति देने के लिए उज्ज्वल रस अनर्पित चरिन चिरा करुण यावतीर्ण कलो, ये जो जो अनर्पित चीज जो आज तक अर्पित किसी ने नहीं किया था, किसी भी अवतार ने नहीं दिया था, वो चीज वो उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो वो कैसे प्रदान कर सकते हैं जब जब वो खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको खुद पहले प्रकट करना था, खुद प्रकट करके अपने खुद के उदाहरण से दिखा के उनको प्रदान करना था इस दुनिया को। इसलिए पहली बार गया में उन्होंने ये विप्रलंब सेवा आरंभ की, प्रकट की। और उनके शिष्यों ने तो कभी ये देखा ही नहीं था, ये क्या है, ये कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे। आज तक तो हमारे जो अध्यापक हैं केवल व्याकरण की बात बोलते थे, संधियों की बात बोलते थे, धातुओं की बात बोलते थे, और आज अचानक ये कृष्ण कृष्ण ये सब क्या चल रहा है, बिल्कुल भ्रांति में पड़ गए सारे शिष्य। फिर किसी न किसी तरह से उन्होंने निमाई पंडित को शांत करने का, सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन निमाय पंडित कहते अरे क्या शांत करोगे मुझे, जब हमें कृष्ण छोड़ के यहाँ चले गए हैं, तब मुझे संसार का क्या चीज मुझे शांति दे सकती है, अभी मैं भौतिक जीवन से बिल्कुल अलिप्त हो गया हूँ, अभी मैं नवद्वीप लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा और वहाँ पर मेरे प्राणनाथ कृष्णचंद्र वहाँ पर विराजे हैं, वहाँ मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, तुम लोग जाओ वापस नवद्वीप। और ऐसे दो चार दिन और बीत गए गया धाम में। एक दिन अचानक बीच रात में, ये बहुत बहुत सुबह प्रातः काल में, निमाय पंडित नींद से उठे और हा कृष्ण कहते हुए कहा है कृष्ण, वो मथुरा की ओर चल पड़े अकेले में। और वो चल रहे थे, काफी दूर पहुंचे, अचानक एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बहुत बादल के गरजने की तरह आवाज आई कि हे प्रभु, आप तो स्वयं वैकुंठ के स्वामी हैं, आप तो हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन कृपा करके आप याद रखिए कि आप किस उद्देश्य से ये अवतार लेकर यहाँ पर धरातल पे आए हैं। आपका उद्देश्य है कि सारे जगत भर में आपके चरणों के प्रति ही शुद्ध प्रेम फैलाना, आपको हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन करना है, इसके लिए वापस नवद्वीप में जाकर आपको कीर्तन करना है, जगह जगह जाकर हरिनाम का वितरण करना है सब जगह जाकर, इसलिए मथुरा जाने का समय अब नहीं है, वो आगे चल के आपको मथुरा जाना होगा। अभी ही आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा, वैसे तो आप स्वराट हैं, आपको कौन कुछ आदेश दे सकता है, आप जो मन में चाहे वो कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं, फिर भी हम आपके प्रिय सेवक हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस समय आपका मथुरा जाना उचित नहीं है, कृपया वापस नवद्वीप लौट जाइए और नवद्वीप में आपके हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन आरम्भ कीजिए। ये कलयुग का युग धर्म है, कलयुग में लोग इतने पतित हैं और ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए हैं, अगर आप मथुरा चले गए तो फिर इन सब लोगों का क्या होगा? फिर कली का प्रभाव तो बढ़ता जाएगा, तो कृपया वापस नवद्वीप धाम लौटकर चले जाइए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, थोड़े शांत हो गए और वापस चले आए। और वापस आकर वही विरह की भावना खोजते रहे कृष्ण को, और उनके शिष्यों को पता नहीं चला कि कैसे शांत करना चाहिए निमाय पंडित को। और चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में ही श्री गोस्वामी चले हैं, छह गोस्वामी वृंदावन के जो उनके छह प्रमुख शिष्यों में से थे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे चल के उनको आदेश दिया कई साल बाद कि आप वृंदावन में जाना, वृंदावन में जो कृष्ण की लीला स्थली है उनको फिर से प्रकट कराना, कृष्ण भक्ति के ऊपर शास्त्र लिखना और वहाँ पे सुंदर मंदिर की स्थापना करना ताकि लोग आकर वहाँ कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। तो छह गोस्वामी इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यही विप्रलंब सेवा की भावना ग्रहण कर ली। इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य बताते हैं कि किस तरह से ये छह गोस्वामी कृष्ण को ढूंढते हुए वृंदावन में निवास करते थे। छह वृंदावन में जो कृष्ण की भूमि है, लेकिन हमेशा कहाँ है कृष्ण, ये विप्रलंब की भावना में रहते थे। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन पाद पल्प तले, कालिंदी वंजे कुत, घोषंतावति सर्वतो व्रजपुरे, हे दैर्महाविह्वलो। इस प्रकार से ये छह गोस्वामी इधर उधर जाते थे, इधर उधर वृंदावन में घूमते फिरते थे। तो ये भावना हमारी परंपरा की भावना है, लेकिन इस भावना को समय से पहले लाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले दास्य भाव में रहकर भक्तों के बीच में रहना चाहिए, भक्तों के दास के रूप में, भगवान के दास के रूप में, बल्कि भगवान के दास के दास के दास के रूप में। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। निमाय पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? मैं कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं हूँ। मैं ना तो ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केवल जो सारे पूर्ण ब्रह्मांड को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, उनके जो परम भक्त हैं गोपियाँ, उनके दासों के दासों का दास हूँ। गोपियों के स्वामी गोपी भर्तु भगवान कृष्ण, उनके मैं दासों के दासों का दास हूँ। तो ये भावना में केवल हमें अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और फिर सही समय पर, इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, जब भगवान इच्छा करे तब हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमें भक्ति को बड़े गंभीरता से अभी से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगले जन्म में हम इसको पूर्ण करेंगे, इसी जन्म में हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है। भगवान की सेवा हमें इस गंभीरता से और इस तीव्रता से करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये निमाय पंडित की शिक्षा है। तो इस प्रकार से वापस अपने शिष्यों के संग निमाय पंडित वापस चले गए। और इस समय वृंदावन दास ठाकुर, जो कि चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का वर्णन करते हैं, बड़े सुंदर ढंग से इस कथा को समाप्त करते हैं, ये बताते हुए कि इन कथाओं का वर्णन करने की शक्ति या प्रेरणा केवल नित्यानंद प्रभु से उनको मिली है। जैसे चैतन्य महाप्रभु शुद्ध खुद श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु वो स्वयं श्री बलराम है। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि मैं तो केवल श्री गौरांग महाप्रभु के आदेश के अनुसार ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। और वो कहने लगे कि मैं तो केवल एक कठपुतली हूँ, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, और ये कठपुतली खुद कुछ नहीं करता। जैसे कठपुतली को चलाने वाले व्यक्ति वो जैसे नचाता है वैसे कठपुतली नाचता है। तो ठीक उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु के पद चिन्हों में मैं हूँ, जैसे गौरांग महाप्रभु डोरी हिला रहे हैं वैसे मैं हिल रहा हूँ। और वो कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु जादूगर हैं और उनके जादू के वश में आकर मैं ये लिख रहा हूँ। इसी तरह ये जो भावना है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भी है, जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। वो भी कहते थे कि ये चैतन्य चरितामृत जो है लोग कहते हैं कि मैंने लिखा है क्योंकि कलम मैंने हिलाया, लेकिन वास्तव में मेरा काम उतना ही था, केवल कलम मैंने कागज पर रखा था। लेकिन लिखने वाले महान वैष्णव हैं और खास करके मदन मोहन जी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने की क्या जो इतिहास है वो ये है कि उनको प्रेरणा मिली। सारे वैष्णव उनको बार बार बताया करते थे कि हे कृष्णदास कविराज, आपको चैतन्य लीला के बारे में ग्रंथ लिखना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अगर मदन मोहन जी, जो माता राधा मदन मोहन का विग्रह है वृंदावन में, अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ये ग्रंथ लिख पाऊंगा। तो मदन मोहन जी की मूर्ति के सामने गए, प्रार्थना कर रहे थे कि हे मदन मोहन जी, कोई इशारा दीजिए जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने के लिए। और उस समय मदन मोहन के गले में जो फूलों की माला थी वो तुरंत गिर पड़ी और उनके गले में आ गई। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समझ लिया कि हाँ, मदन मोहन जी ने उनका आशीर्वाद दे दिया है। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे वैष्णवों के पास गए, सबका आशीर्वाद उन्होंने मांगा कि आप आशीर्वाद दीजिए तभी मैं चैतन्य लीला का वर्णन कर पाऊंगा। तो सारे वैष्णवों ने आशीर्वाद दिया, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने चैतन्य चरितामृत की रचना की ये गलत है, रचना करने वाले मदन मोहन है। और केवल मदन मोहन और इन महान ब्रजवासी वैष्णवों की वजह से ये सब संभव हुआ है। चैतन्य लीला ये तो विशाल सागर के बराबर है, जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है, इसकी गणना नाप तोल कोई नहीं कर सकता है। तो भला इसमें डूब कौन सकता है, इसमें प्रवेश करने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, फिर भी इस विशाल सागर के तट पे खड़े होकर मैं एक बूंद का सेवन कर रहा हूँ और ये एक बूंद ये चैतन्य चरितामृत है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में चैतन्य लीला कितनी विशाल है। मैं तो उस एक छोटे लाल चोंच वाली पक्षी के बराबर हूँ जो कि अपने प्यास को बुझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सागर का पानी आकर पीती है। कहने का मतलब है कि छोटा सा पक्षी सागर का कितना पानी पी सकेगा, एक बूंद, चार पांच बूंद। तो सागर ये चैतन्य लीला है, इतना विशाल। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं छोटे पक्षी के बराबर हूँ, एक दो बूंद ज्यादा से ज्यादा मैं इसका सेवन कर सकता हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। और आगे ये भी बताते हैं कृष्णदास कविराज कि मैं एक तोते के बराबर हूँ। आप तोते को कुछ बताएंगे तो तोता वही बात दोहराता है, गुड मॉर्निंग बोलेगा तोता भी गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं मैंने तो तोते के बराबर इस ग्रंथ को लिखा है, मैं क्या जानू ये चैतन्य महाप्रभु की महान भक्ति क्या है। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े महाभागवत थे, अपनी नम्रता से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत गुही बात बता रहे हैं कि भगवान और भगवान की लीलाओं का वर्णन केवल भगवान कर सकते हैं, भगवान ही भगवान को जानते हैं और कोई भगवान को जान नहीं सकता। और अगर कोई भगवान को जान पा रहा है और भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहा है तो वो केवल इसलिए कि भगवान उस व्यक्ति को उपयुक्त शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अन्यथा कोई भी भगवान और भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ रहेगा। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, असमर्थ समझते हैं और अपने आप को भगवान और भक्तों की कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर समझते हैं। और आगे ये भी एक घटना है, बलदेव विद्याभूषण जो कि हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य रहे, जब जयपुर में गौड़ी वैष्णवों के बारे में एक टीका हुई कि इनके संप्रदाय में कोई वेदांत के ऊपर टीका नहीं है, इसलिए ये संप्रदाय झूठा है, प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि हर एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में वेदांत का टीका रहता है। तो राजा जयसिंह ने गौड़ी वैष्णवों को बुलाया, कहा कि देखो ये रामानंद लोग आपके संप्रदाय के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो जल्दी से एक टीका आप दे दो आपकी। तो वैष्णवों ने कहा कि टीका तो श्रीमद् भागवत है, वेदांत की रचना की है वेदव्यास ने, तो जो लेखक हैं वही सबसे अच्छा जानते हैं कि इसकी टीका क्या होनी चाहिए, और टीका उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में लिखी है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, भागवत में इसका प्रमाण है, श्रीमद् भागवत ही वेदांत का टीका है, तो फिर और टीका लिखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन रामानंदी लोग और राजा भी नहीं माने, कहा कि एक महीना समय देता हूँ, उसमें आपको वेदांत की टीका लिखकर लानी है अगर आपके पास है तो। उस समय सारे वैष्णव जो है दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए। फिर सब लोग बलदेव विद्याभूषण के पास आए और बलदेव विद्याभूषण ने सोचा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और फिर वो स्वयं गोविंद देव के पास गए जो कि रूप गोस्वामी की विग्रह थी जो जयपुर लाई गई, मुगलों के आक्रमण के डर से वृंदावन से उनको जयपुर लाया गया था। तो गोविंद देव के सामने आकर बहुत तीव्रता से बलदेव विद्याभूषण ने प्रार्थना की और उस समय गोविंद देव ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, मैं इस ग्रंथ को लिखूंगा, तुम केवल हाथ हिलाते रहो। और फिर बलदेव विद्याभूषण को अंदर से भगवान ने बुद्धि दी और बलदेव विद्याभूषण ने वो टीका लिखी वेदांत के ऊपर एक महीने में, और इसलिए इस ग्रंथ को उन्होंने गोविंद भाष्य कहा, क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरा भाष्य नहीं है, ये गोविंद देव का भाष्य है, भगवान कृष्ण का भाष्य है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस ग्रंथ की रचना की है, मैं तो केवल एक निमित्त था। और फिर इस ग्रंथ को राजा जयसिंह के सामने पेश किया गया और फिर राजा को और रामानंदी लोगों को गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को एक प्रामाणिक संप्रदाय मानना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जो भी महान ग्रंथों की रचना होती है जिनमें भगवान और भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, उसमें विशेष कृपा करके भगवान थोड़े भक्तों को वो शक्ति और सामर्थ्य देते हैं ये कार्य करने के लिए। तो आगे चल के वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ये एक आकाश के बराबर है। आकाश तो आप जानते हैं अनंत है, जितना भी आप आकाश में जाएं आप आकाश के अंत तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी आकाश में जाता है अपने साक्षात्कार के अनुसार और फिर अपने शक्ति के अनुसार और लौट के आता है, उसी प्रकार से जो महान महान भक्त होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं या अनंत शेष हैं, वो अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार जिस सीमा तक वो पहुंच सकते हैं अपने साक्षात्कार के हिसाब से, वो उस हिसाब से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और यही बात सूत गोस्वामी नैमी शरण में श्रीमद् भागवत का प्रवचन आरंभ करने से पहले वो वहां के ऋषियों को बताते हैं कि कृष्ण कथा इतनी विशाल है, वो अनंत आकाश के बराबर है और अलग अलग पक्षियों की अलग अलग पात्रता होती है। एक पक्षी जैसे गरुड़ होता है बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो चिड़िया होती है बहुत कम उड़ सकती है, तो अलग अलग पक्षियों को यथाशक्ति वो उड़ सकते हैं आकाश में और फिर लौट के आते हैं। उसी प्रकार से जो अलग अलग भक्त होते हैं उनके साक्षात्कार अलग अलग हो सकते हैं, जो ज्यादा शुद्ध भक्त हैं वो ज्यादा विस्तार में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी एक छोटे पक्षी के बराबर हूँ, मैं कहां तक आकाश में उड़ता रहूंगा भगवान की कथाओं का वर्णन करते हुए, लेकिन फिर भी जितना मेरे अंदर पात्रता है मैं प्रयास करूंगा। उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं कि ये बात ध्यान में रखा जाए कि जब पक्षी आकाश में उड़कर लौट के आता है, पक्षी क्यों लौट के आता है? क्योंकि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है। अगर पक्षी के पास शक्ति होती तो शायद आकाश में और ऊंचा उड़ जाता, लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो गई इसलिए लौट कर आता है। पक्षी इसलिए लौट कर नहीं आता कि आकाश समाप्त हो गया। तो कमी किसमें है? पक्षी में है। तो ठीक उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि भगवान की लीला ये ऐसे आकाश है, और जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, अगर लीला का वर्णन करना समाप्त करते हैं तो इसलिए नहीं कि लीला समाप्त हो गए, लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि अब समाप्त हो गई, अब कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। ब्रह्मा जी, अनंत शेष, ये भी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। जब बुद्धि उनकी थक जाती है और समझ नहीं पाते तो वो रुक जाते हैं, लेकिन भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा, उनकी लीला, ये तो अनंत है। और फिर भी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं केवल एक आकाश में थोड़ा कुछ उड़ने वाला छोटा सा पक्षी हूँ। मैं ऐसे चेतन लीला को विस्तारित रूप से जितने मेरे साक्षात्कार मुझे साथ दे उतना मैं करने के लिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, और ये केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से है। कोई लोग नित्यानंद प्रभु को बलराम कहते हैं, कोई उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक कहते हैं, कोई उनको अवधूत कहते हैं, कोई ज्ञानी कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नित्यानंद प्रभु मेरे आराध्य देव रहेंगे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, इसलिए अगर मैं नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करूंगा तो चैतन्य महाप्रभु भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि सारे वैष्णवों की कृपा याचना करते हुए और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हुए मैं निमाय पंडित के ये गया गमन यात्रा की समाप्ति करता हूँ, और आगे चल के चैतन्य भागवत के मध्य खंड में मैं ये वर्णन करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नवद्वीप में लौट कर निमाय पंडित ने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का आरंभ कैसे किया। तो जब निमाय पंडित गया से नवद्वीप लौट कर आए, उनका किस तरह से स्वागत हुआ और उनमें जो परिवर्तन है वो कैसे प्रकट हुआ, और हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन उन्होंने कैसे आरंभ किया, वो हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने गया में जाकर श्राद्ध किया तो क्या वैष्णवों पर करने की आवश्यकता है? एक दृष्टि से देखा जाए, जैसे कल चर्चा हो रही थी, कि जो भी अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, अन्य भाव से करने का प्रयत्न कर रहा है, वो सारे ऋणों से मुक्त हो चुका है, इसलिए गया वगैरह जाके श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर करना भी हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंततः हमें जानना चाहिए कि कृष्ण भक्ति ही न केवल हमें लेकिन हमारे सारे पितरों को और सारे जगत का उद्धार कर सकता है। और वैष्णवों को अगर करना ही है तो सरल तरीका है कि वैष्णवों को बुलाकर कीर्तन करें, कथा करें और प्रसाद, कृष्ण प्रसाद का वितरण करें, या मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं जैसे रविवार हो या और कोई दिन हो, उसमें उनके पूर्वजों के प्रति वो अर्पण करें, उसको स्पॉन्सर करें, जैसे उस दिन का प्रसाद हो तो फिर उनके नाम में किया जाए, तो वो कीर्तन, वो कथा, वो प्रसाद उनके नाम में करने से वो श्राद्ध के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है हमारे भक्तों के लिए। निष्ठान किया है कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल बिहार की भूमि पर पड़े तो वो भूमि धन्य हो गई। आजकल ऐसी मार काट इससे क्यों मतलब क्या उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि इतना वो परिवर्तित हो गया?
ऐसा कौन सा स्थान है यार यहाँ पर आजकल ऐसी अवस्था नहीं है? हर जगह अभी हर जगह बिहार बन गया है, कहाँ भी आप जाइए अभी दशा इतनी बुरी हो गई है। आप वृंदावन भी जाइए कितने डाकू हैं वहाँ पर। हाँ वो ब्रजवासी डाकू हैं, उनको भगवान ने अलग से उनका हमें निंदा नहीं करनी चाहिए दृष्टि से, क्योंकि वृंदावन में के लोग हैं कितने खून खराबे होते हैं, क्या क्या नहीं होता है वहाँ पर मथुरा वृंदावन में भी। कौन से भी धाम में जाइए आप, किसी भी पावन भूमि में जाइए, हर जगह ये कलयुग का प्रभाव है। और वैसे भारतवर्ष पावन भूमि कहलाता है, पुण्य भूमि कहलाता है, इसका शायद ही कोई स्थान होगा भारतवर्ष में भी ज्यादा से ज्यादा लोग पतित होते जा रहे हैं। देखिए प्रभु रामचंद्र कहां से कहां यात्रा करते होंगे, अयोध्या से लेकर पूरे दंडकारण्य से लेकर पंचवटी से लेकर नीचे आते हुए दक्षिण भारत में होते हुए फिर पंपा सरोवर किष्किंधा क्षेत्र से होकर लंका तक गए। भगवान कृष्ण मथुरा से लेकर वृंदावन, वृंदावन से गोकुल, गोकुल से आगे चल के वो मथुरा, मथुरा से फिर होते हुए द्वारका, द्वारका से फिर मिथिला तक भी आए गए, कितनी बार विदर्भ तक आए। ऐसे हरेक अवतार के बारे में हम देखेंगे तो सारे भारत वर्ष में उन्होंने स्पर्श किया हुआ है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जहाँ ज्यादा कृपा होती है वहाँ ज्यादा अपेक्षा भी की जाती है, क्योंकि भारतवर्ष के लोग इतने भाग्यशाली हैं, भगवान ने इतनी कृपा की है भूमि के ऊपर, बचपन से ही उनको ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति मिलती है, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो ऐसी दशा होगी। जैसे एक दफ्तर में एक प्यून होता है साधारण जो इधर से उधर सामान ले जाता है या तो झाड़ू मारता है, उसको भी कंपनी की ओर से कोई सुविधा मिलती है, लेकिन जो डायरेक्टर को मिलता है मैनेजर को मिलता है वो सुविधा तो बहुत ज्यादा है। क्यों है? मैनेजर को डायरेक्टर को ज्यादा सुविधा क्यों मिलती है? क्योंकि जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर गलती कोई वहां का चौकीदार करेगा या और कोई करेगा, अगर वो 10 रुपए चोरी कर लेता है तो ठीक है थोड़ा बहुत सजा देकर को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर चोरी करेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसका जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है तो छोटा जो दोष जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष को ज्यादा सुविधा है। क्यों? आध्यात्मिक सुविधा, भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, इतने महान भक्त यहाँ प्रकट हुए हैं, और जितनी ज्यादा सुविधा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी कि हम पाप नहीं करें, भक्ति मार्ग में चलें, और छोटा सा दोष बहुत ज्यादा परिणाम। बाहर के लोग पाप करते हैं उनको फल तो मिलना ही है और मिलेगा, लेकिन वही पाप को अगर हम यहाँ पर करेंगे ज्यादा सजा मिलेगी हमें। इसलिए अभी यहाँ पर इतना दारिद्र है, इतना कष्ट है, यहाँ पर इतना संघर्ष है, खून खराबा है, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में रहते हुए भी भगवान की भक्ति के विमुख हो गए हैं। तो केवल बिहार की बात नहीं है, हर जगह, और केवल भारतवर्ष में भी नहीं, दुनिया के कोने कोने में कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है, और कलयुग के प्रभाव को मिटाने के लिए केवल चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ही एकमात्र उपाय है। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण।
शिव जी एक शुद्ध वैष्णव होते हुए भी उन्होंने जो एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और इसमें और मायावाद वैष्णववाद का प्रचार किया, इसका क्या कारण?
हाँ इसके पीछे भी एक कारण,
वो ब्राह्मण कौन थे?
शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त होने के नाते भगवान के आदेश का पालन करते हैं। जब
कलयुग के शुरुआत में ब्राह्मणों का पतन होने लगा और वो वेद शास्त्रों के का दुरुपयोग करने लगे, पशु हत्या करने लगे केवल जिह्वा की वजह से, तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया ताकि यह पशु हत्या बंद हो जाए, और ये करने के लिए उनको वेदों को ठुकराना पड़ा, उनका तिरस्कार करना पड़ा, अस्वीकार करना पड़ा वेदों को। और जब वेदों को अस्वीकार किया गया इस पशु हत्या को बंद करने के लिए, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है पशु हत्या तो बंद हो गई, लेकिन पुनः वेदों को स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि वेद तो मेरा वचन है, तो वेदों को स्थापित किया जाए तो कैसे, सीधे भक्ति के सिद्धांत अगर लाए जाए तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत अंतर है बौद्ध धर्म में और भक्ति मार्ग में, तो कोई बीच का कोई सिद्धांत चाहिए, बीच का सिद्धांत पहले लाएंगे ताकि लोगों को परिवर्तन करने के लिए कम तकलीफ होगी, बौद्ध धर्म से मायावाद अगर आएंगे ज्यादा अंतर नहीं है, फिर मायावाद से भक्ति धर्म में आ सकते हैं, इसलिए बीच का पॉइंट उनको कुछ चाहिए था। तो उन्होंने शिव जी को आदेश दिया, ये शिव जी आप मेरे परम भक्त हो तो मेरा ये कार्य आप कर दो, आप जाना पृथ्वी लोक पर और ऐसे लोगों को भ्रमित करके ये मायावाद शास्त्र फैला देना जिससे बौद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा, वेदों की स्थापना होगी, वेदों को स्थापित करना आपका मुख्य काम होगा, और क्योंकि बौद्ध लोग भक्ति को नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको ऐसे एक सिद्धांत को प्रस्तुत करना है जो निराकारवाद होगा, बौद्ध धर्म के समान होगा लेकिन फिर भी इसमें वेद शामिल होंगे। और फिर भगवान ने क्या इंतजाम किया, एक बार शंकराचार्य आए और मायावाद सिद्धांत स्थापित हो गया, उसके बाद भक्ति का विस्फोट हो गया, है ना? फिर आए रामानुजाचार्य,